मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 14 जनवरी 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने युवा मित्रों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही स्वागत करता हूं उन तीन नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 15 से 29 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस में एडमिशन लिया है। इन दोस्तों के नाम हैं श्रुति सुमन गांव रामदीरी जिला बेगूसराय बिहार से, हितेश साहू गांव बापहारा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से और शुभम कुमार पटना बिहार से। दोस्तों आज एक छोटी सी सूचना है और यह सूचना हमारे ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है कि हमारे जो ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए हम लोग हर महीने एक करेंट अफेयर्स का कलेक्शन प्रोवाइड उन्हें करते हैं। ये जो कलेक्शन होता है ये पूरी तरह से घटनाओं का कलेक्शन नहीं होता बल्कि उन घटनाओं का कलेक्शन होता है जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो सूचना यह है कि दिसंबर माह में जितनी भी घटनाएं घटी हैं उसके दो पार्ट होते हैं, प्री एग्जाम की दृष्टि से और मेन एग्जामिनेशन की दृष्टि से। वह डाल दिया गया है ऑनलाइन का जो आप कह लीजिए कि खजाना है, जो ट्रेजर है उसमें उपलब्ध करा दिया गया है तो आप सब उसे एक्सेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज के मुख्य विषय के रूप में मैं आपसे ई कॉमर्स कंपनियां और भारत इस विषय पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरे तथ्यों को देख लेते हैं। एक खबर आप लोगों ने अखबार में पढ़ी होगी और यहां तक कि न्यूज में भी आप लोगों ने सुनी होगी, द्रोण के स्वैच्छिक पंजीकरण को लेकर। ये द्रोण क्या होते हैं, मुझे लगता है कि अब ये नया नाम नहीं रह गया है। इसकी परिभाषा आप दे सकते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यानी कि यह हवा में उड़ने वाला एक ऐसा वाहन है जिसमें कोई व्यक्ति नहीं होता, या आप कह लीजिए एक विमान है छोटा सा, है ना, जिसमें व्यक्ति नहीं होता, वो बस ऑटोमेटिक तरीके से उड़ता रहता है और नीचे से उसे कंट्रोल किया जाता है, उसे कहा जाता है ड्रोन। भारत सरकार ने यह कहा है कि जिनके पास भी ड्रोन है वे 31 जनवरी तक उसका रजिस्ट्रेशन करा लें। रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है, इसमें प्राइवेट ड्रोन भी होते हैं, तो सरकार को कुछ ऐसा पता लगा है कि बहुत से ऐसे ड्रोन भी हैं जो लोगों के पास हैं और जिनके बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है, और सरकार का अनुमान है कि लगभग इस तरह के 50-60 हजार ड्रोन हैं, थोड़े मोड़े नहीं 50-60 हजार ड्रोन हैं, तो 31 जनवरी तक उसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। देखिए प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है इसमें वो ये है कि ये जो रजिस्ट्रेशन होगा, ये जो ड्रोन के जो सारे मामलों को देखने वाला जो हमारा मंत्रालय है वो विमानन मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक विमानन मंत्रालय, ये आपके दिमाग में क्लियर रहना चाहिए। सरकार ने जो अभी ये निर्णय लिया है वो उसके तात्कालिक कारण ये है कि अभी आपको मालूम है कि जो ईरान के एक ग्रुप था उसके जो जनरल थे सुलेमानी, उनको बगदाद में मार गिराया गया, उसको लेकर के ईरान और अमेरिका के बीच में इतनी तनातनी भी हुई थी, खासकर उनकी जो हत्या हुई है आप कह लीजिए वह ड्रोन के हमले से ही हुई है, तो यानी कि ड्रोन अब राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण आप यूं कह लीजिए कि एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है, तो इस पर सरकार को बहुत पर्याप्त ध्यान देना ही होगा। तो प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से मैं समझता हूं कि इतनी बातें ही आपके लिए जाननी पर्याप्त होंगी। दोस्तों आज मैं आपसे थोड़े से एक नए अंदाज में भी बातें करने जा रहा हूं। अखबारों में आपने एक न्यूज आइटम पढ़ा होगा डेफिनेटली, इकोनॉमिक्स के अखबारों में भी है और सामान्य अखबारों में भी है। मैं एक टाइटल आपको पढ़ के सुनाता हूं, दरों में कटौती की संभावना घटी, दरों में कटौती की संभावना घटी, ये मेन हेडलाइन है और उसके नीचे पतले अक्षरों में लिखा हुआ है खुदरा मुद्रा स्फीति ने लगाई छलांग, दिसंबर में रही 7.35%। ये आज के अखबारों में है, अलग अलग भाषा हो सकती है, तथ्य यही है कि महंगाई बढ़ गई है, खुदरा मुद्रा स्फीति और उसके कारण जो अब बैंक कि आपको मालूम है कि हर दो महीने में मौद्रिक नीति घोषित करती है, उसमें बैंक रेट घटाए और बढ़ाए जाते हैं, तो उसमें यह दिया गया है कि अब दरों में कटौती की संभावना नहीं रह गई है। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं और वो ये कि आप दोनों को जोड़ करके और इसे समझने की कोशिश कीजिए कि भाई ये क्या बात हो गई कि अगर खुदरा मुद्रा स्फीति बढ़ गई है तो बैंक के दरों में कटौती नहीं हो सकती है, और अगर होगी तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। बेहतर होगा कि आप सब इस पर विचार करें। एक बात, अगर आपके इकोनॉमिक्स की तैयारी पूरी हो गई है और इस पर आप बहुत अच्छे तरीके से विचार कर सकते हैं तो यह एक प्रकार का परीक्षण है कि नहीं नहीं आपकी वास्तव में तैयारी पूरी हो गई, अच्छी हो गई है। और अगर तैयारी पूरी हो गई है और आप इसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो मान करके चलिए कि आपकी तैयारी में अभी कुछ खामी है। और ये जो कुछ खामी है यह कोई सामान्य खामी नहीं है, बल्कि बहुत मूलभूत कमी है। तो आपको अपनी तैयारी के पर फिर से विचार करना चाहिए। दोस्तों, कल मैंने आपको छात्र आंदोलन को लेकर के कुछ आर्टिकल्स प्रोवाइड कराए थे, उसी संबंधित अब मैं एक और भी आपको आर्टिकल आज प्रोवाइड कर रहा हूं और एक टॉपिक बता रहा हूं जो मेन एग्जामिनेशन की दृष्टि से मुझे महत्वपूर्ण मालूम पड़ रहा है। हालांकि इससे पहले भी मैं छात्र आंदोलन के बारे में कुछ कह चुका हूं। मुझे लगता है कि इस टॉपिक पर भी आपको तैयारी करना चाहिए कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में छात्रों की, युवाओं की क्या भूमिका रही है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2013 या 2014 के मेंस में एक प्रश्न पूछा गया था जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर में, और उसमें महिलाओं की भूमिका के बारे में पूछा गया था, स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका। तो उसी पैटर्न पर थोड़ी सी संभावना बनती है कि छात्रों की भूमिका पर प्रश्न पूछ लिया जाए। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो मुझे आज आपको एक नए तरीके से बतानी थी। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और मुख्य विषय है ई कॉमर्स कंपनियां और भारत। इस विषय को मैंने क्यों चुना है? इस विषय को मैंने इसलिए चुना है कि आज के अखबारों में आपने पढ़ा है कि हमारे यहां जो एक आयोग है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है हमारे यहां की, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसने फ्लिपकार्ट डैश अमेजॉन, डैश मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमेजॉन तो आपको मालूम है कि विदेशी कंपनी, अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है, और उसने अब भारत के फ्लिपकार्ट को एक तरीके से खरीद लिया है और यहां के उसको नाम दे दिया है flipkart.amazon, अमेजॉन भी कहते हैं। इसके जांच के आदेश दिए हैं, राइट। तो अब देखिए कि जब यह घटना घटित हुई है तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से हमारे सामने दो टॉपिक उपस्थित होते हैं। दो टॉपिक, पहला टॉपिक होता है कि भाई ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग क्या है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ी सी बातें जाननी चाहिए। दूसरी बात यह हुई कि ये जो जांच के आदेश दिए गए हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सरकार को गड़बड़ी लगी होगी। अब चलिए, जो भी जांच की रिपोर्ट आएगी वो बाद की बात है, लेकिन यहां फिर से हमारे लिए एक टॉपिक तैयार होता है कि भाई जो जांच के आदेश दिए हैं, बट नेचुरल है कि उन्होंने किसी बात का कुछ उल्लंघन किया होगा, किसी ने कोई शिकायत की होगी, तो वो शिकायतें क्या हैं और उस शिकायतों के निवारण के लिए क्या हमारे पास कुछ उपाय हैं, क्या कुछ नियम कानून है, कुछ नियम कानून होंगे जिसका उल्लंघन इसने किया होगा और उसी की जांच पड़ताल की जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि अभी हमारे लिए यह अवसर है कि हम बकायदे जो ई कॉमर्स कंपनियों की स्थिति भारत में है, इनके क्या लाभ हैं, इनसे क्या नुकसान हो सकते हैं, और भारत सरकार ने बकायदे नई ई कॉमर्स नीति लागू की है जो 1 फरवरी 2019 से लागू हो गई है, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। देखिए, मेंस की तैयारी तो तभी होती है, और हो सकता है कि प्री में भी पूछ लिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों बिल्कुल एकदम अलग अलग ही हैं। तो इस पर मैं थोड़ी सी रोशनी आपके सामने डाल पाऊंगा दोस्तों, क्योंकि वक्त बहुत कम है। देखिए, जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है ये एक सांविधिक निकाय है, राइट, स्टेचुरी बॉडी है, यानी कि बकायदे एक्ट के जरिए इसे स्थापित किया गया है। 2002 में हमारे यहां प्रतिस्पर्धा कानून बना था, 2002 में कंपटीशन एक्ट 2002, और उस कानून को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी इस भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को दी गई। ये कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय हमारा जो है उसके तहत ये काम करता है, और आपको मैंने शुरू में कहा कि ये बकायदे एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, विनियामक आयोग जिसे आप हिंदी में कहते हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में आप जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो ये आपको जानना चाहिए कि ये होती क्या है। देखिए इसका जो मेन पर्पस क्या है, हालांकि है ये प्रतिस्पर्धा आयोग, देखिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, लेकिन इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, यानी कि कंज्यूमर, हम सब कंज्यूमर हैं कि हमारे हितों की रक्षा करें। आपके दिमाग में आ सकता है कि प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं के हितों का क्या लेना देना है, ऐसा लगता है, लेकिन अगर आपने इकोनॉमिक्स की थोड़ी भी तैयारी की होगी तो डेफिनेटली आपको इस बात की जानकारी होगी कि जो प्रतिस्पर्धा होती है, अगर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है तो वो बहुत अच्छी बात है। और सच पूछिए, इस मंत्रालय के दायित्वों में से एक दायित्व यह भी है कि वह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करे, लेकिन एक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी होती है, अस्वस्थ अनहेल्दी कॉम्पिटिशन, जहां पर कि जो बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं व्यापारिक जगत के, वो हो सकता है कि आपस में गठबंधन कर लें, और गठबंधन करने के बाद अपनी चीजों की कीमत कितनी भी बढ़ा दें, ये भी एक हो सकता है, या पता लगा कि उनके आपसी प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो ऐसे प्रतिस्पर्धाओं को रोकने की जिम्मेदारी, रोकने का जो दायित्व है इस आयोग पर है। दोस्तों जहां तक ई कॉमर्स कंपनियों की बात है, उसके बारे में आप काफी कुछ जानते भी होंगे कि हमारे आज बहुत से जो काम है वो ई कॉमर्स के जरिए होने लगे हैं, बहुत सी जो खरीददारी है वो ई कॉमर्स से ही होने लगी है। आप सब भी मंगाते होंगे बकायदे, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इन सब के नामों से आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं। ये तो एक पक्ष हो गया, लेकिन भारतीय पक्ष क्या है? भारतीय पक्ष ये है कि हमारे यहां अभी भी लगभग 1,40,00,000 खुदरा व्यापारी है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिटेलर्स हैं। और ये जो इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, आप देखते हैं कि हम ऑनलाइन चीजें क्यों खरीदते हैं, नो डाउट कि हमें उससे कुछ फायदा है, लेकिन जो सबसे बड़ा फायदा हमें लगता है ये कि वहां वो चीजें सस्ती प्रोवाइड करती हैं, चूंकि वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं तो वो हमें सस्ता सामान उपलब्ध कराती हैं। अभी जो सस्ता सामान उपलब्ध कराती है तो देखिए वो प्रतिस्पर्धा क्या करती है। अखबारों में आप देखते हैं कि दिवाली आए तो दिवाली का पता लगा कि एक सप्ताह की दिवाली सेल लग रही है, पता लगा कि एक मोबाइल सेट है, और मोबाइल सेट अगर आप किसी दुकानदार के यहां से खरीदने के लिए जाएं तो पता लगा कि वो 10,000 रुपए में दे रहा है, और आप अमेजन फ्लिपकार्ट से उसे आप 8,000 में मंगा लीजिए, 7,000 में मंगा लीजिए, तो उपभोक्ता तो उधर ही जाएगा। लेकिन सच ये है कि वो भी नुकसान में बेच रहे हैं, लेकिन वो इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि इस नुकसान को बर्दाश्त कर सकते हैं। उनका पर्पस क्या होता है कि ये जो खुदरा व्यापारी है इनको मार्केट से बाहर कर दिया जाए, जो कंज्यूमर है उनमें आदत डाल दी जाए कि हमें ऑनलाइन खरीदी ही करना है, और इसके बाद में जो भी रेट हमें लेना होगा वो हम लेंगे। तो यानी कि कंज्यूमर को अभी वो फायदा पहुंचा करके भविष्य में अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। तो अब आप देखिए कि खुदरा व्यापारी और ये ई कॉमर्स के बीच में जो कॉम्पिटिशन आपको दिखाई दे रहा है वो बकायदे अनहेल्दी कॉम्पिटिशन है, उसे आप हेल्दी कॉम्पिटिशन ही कह सकते हैं। तो इसीलिए सरकार ने कहा है कि इनकी जांच की जाए, आदेश दिया है, आयोग ने आदेश दिया है। आदेश किस बात का दिया गया है, देखिए कि ये पाया गया है कि ये कुछ स्मार्टफोन के जो ब्रांड हैं, जो मॉडल हैं, अपने प्लेटफॉर्म पर बहुत कम कीमत पर बेच रहे हैं, बहुत कम कीमत पर बेच रहे हैं। तो भैया क्या सच में इसकी कीमत यही है? क्या खुदरा व्यापारी ज्यादा रेट में ले रहे हैं? ये क्या है, मूल कीमत से भी आप कम कीमत पर बेच रहे हैं, बहुत छूट दे रहे हैं? तो ये जो छूट है ये क्या किसी गठबंधन के तहत दे रहे हैं, कुछ अच्छे उद्देश्य से दे रहे हैं, या इसके पीछे क्या मामला है? तो दोस्तों इन सब की जांच की जाएगी, और जो आयोग के अध्यक्ष हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि पहली बार हम इस तरह की जांच कर रहे हैं, और इस जांच से हमें ई कॉमर्स क्षेत्र का पूरा जो बिजनेस का मॉडल है उसे समझने में मदद मिलेगी। एक बहुत बड़ी बात है, और सरकार ठीक है, कुछ कंपनियां हैं इस काम को कर रही हैं, लेकिन हमारे यहां जो 1.40 करोड़ जो रिटेलर हैं उनके हितों की अनदेखी नहीं कर सकती। तो दोस्तों अभी समय नहीं है कि मैं ई कॉमर्स नीति के बारे में कुछ बातें कर सकूं, लेकिन मैं यहां सजेस्ट जरूर करूंगा कि आपको इस नीति की जानकारी होनी चाहिए, आप अपने स्तर पर इसकी तैयारी कर लेंगे। फ्रेंड्स, आज मैं थोड़े से आर्टिकल्स के बारे में भी आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं। आज आपको मैं कुछ आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं, आप इन्हें जरूर ध्यान से पढ़िएगा। पहला जो आर्टिकल है वो आम आदमी की बढ़ानी होगी आमदनी, ये डॉक्टर भरत झुनझुनवाला की है। आप जानते हैं कि वो बहुत अच्छा लिखते हैं, और इसे समझ करके पढ़िएगा कि भाई आम आदमी की आमदनी बढ़ाने से क्या हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा आर्टिकल है वह बिजनेस स्टैंडर्ड का है, ये बहुत अच्छा है। ये विस्थापन के ऊपर है और खासकर जलवायु से संबंधित विस्थापन भी इसमें शामिल है। मौजूदा विवाद की जड़ घरेलू और बाहरी प्रवास की मजबूरी, सुनीता नारायण जी का है, ये भी बहुत अच्छा लिखती हैं, आप इसे भी ध्यान से पढ़िएगा, कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। और एक और आर्टिकल है वो है कोयले की कमाई और जंगल का बदला, अभी खासकर जो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी है उसको लेकर के ये आर्टिकल लिखा गया है। कुछ इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, मुझे लगता है कि यदि मैं ये बात आपके ध्यान में नहीं लाऊंगा तो हो सकता है कि आप बहुत सामान्य तरीके से लें, तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा। और आज करेंट कंटेंट के तहत कानूनों की बाढ़, ये टाइटल आपको उपलब्ध कराया गया है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था आर्टिकल, इसमें भी आपको कुछ बहुत अच्छे तथ्य जानने को मिलेंगे। तो दोस्तों, न्यूज़पेपर्स के बारे में बस इतना ही। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, आकांक्षा अनुभूति पटना से, वरुण कुमार नई दिल्ली से, रामू सिंह गौर, किरण दीप कौर, सुभाष सोनी उदयपुर से, और प्रीति ठाकुर, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।